नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण हेतु संवैधानिक संशोधन विधेयक सदन में पारित नहीं हो सका। एनडीए की महिला सांसदों का विपक्षी दलों के खिलाफ संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, विपक्ष का यह जश्न दशकों से अपने अधिकारों का इंतजार कर रही महिलाओं का अपमान। विधानसभा चुनावों से पहले तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में निर्वाचन आयोग ने 865 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की। भारत को होर्मुज जल डमरू मध्य से पारगमन की सुरक्षा के लिए ब्रिटेन फ्रांस के नेतृत्व वाली समुद्री पहल में शामिल होने का निमंत्रण। ईरान की चेतावनी, यदि अमरीका नौसैनिक नाकाबंदी जारी रखता है तो वह जवाबी कार्रवाई करेगा। और महिला क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका ने डर्बन में पहले टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 6 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में कल संविधान 131वां संशोधन विधेयक पारित नहीं हो सका। इस विधेयक में लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित रखने का प्रावधान था। लोकसभा में उपस्थित कुल 528 सदस्यों में से 298 सांसदों ने इसके पक्ष में और 230 ने इसके विरोध में मतदान किया, जो 2/3 बहुमत से कम था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मतदान का परिणाम घोषित किया।
सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित नहीं हुआ। अब इस विधेयक पर आगे की कार्रवाई करना संभव नहीं है।
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि परिसीमन विधेयक 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक सहित अन्य 2 विधेयक संविधान 131वां संशोधन विधेयक से जुड़े हुए हैं, इसलिए इन्हें पारित करने के लिए पेश नहीं किया जाएगा। उन्होंने विपक्ष पर महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने का अवसर गंवाने का आरोप लगाया।
जो नतीजा आया है, ये इतना ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बिल पर देश का महिलाओं को अब सम्मान अधिकार देने का जो बिल है, उसको विपक्ष ने साथ नहीं दिया, बहुत खेद की बात है। और इस ऐतिहासिक पल को आप अपना एक मौका था, आपने गवाया है।
गृहमंत्री अमित शाह ने विधेयक पारित न होने पर विपक्षी दलों के जश्न की आलोचना की और इसे महिलाओं का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि सरकार लोकसभा और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। परिसीमन को लेकर विपक्ष की आशंकाओं को खारिज करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि संविधान में परिसीमन का प्रावधान किया गया है और इससे प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं को उचित प्रतिनिधित्व मिल पाएगा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं के लिए आरक्षण विधेयक नहीं है और इसका महिलाओं के सशक्तिकरण से कोई संबंध नहीं है।
ये संविधान पर आक्रमण था और इसको हमने हरा दिया है। ये महिला बिल नहीं है, ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की कोशिश है, ये हमने रोक दिया है।
एनडीए की महिला सांसदों ने विपक्षी दलों के खिलाफ संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि विपक्षी गठबंधन ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू करने वाले संविधान संशोधन विधेयक को पारित न करके देश की आधी आबादी के साथ विश्वासघात किया है।
देश की आधी आबादी के साथ विश्वासघात करने का काम पूरे राहुल गांधी एंड टीम ने किया है। आधी आबादी को एक भागीदारी सुनिश्चित करने का दिन हो सकता था, उनके हक की मारी कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने किया है। पूरे प्रकरण में पूरी तरह से कांग्रेस का जो एंटी वुमेन एलायंस है वो पूरा एक्सपोज हुआ।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विधेयक को रोकने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष की आलोचना की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि विधेयक के पारित न होने से लाखों महिलाओं को समान प्रतिनिधित्व से वंचित किया गया है और राष्ट्र से याद रखेगा। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि संसद में महिला आरक्षण विधेयक को रोकने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व में उन्होंने विपक्ष की आलोचना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव से पहले तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में 865 करोड़ रुपए से अधिक की जब्ती की है। आयोग ने बताया कि 26 फरवरी को चुनाव जब्ती प्रबंधन प्रणाली के लागू होने के बाद से पश्चिम बंगाल में नकदी शराब, मादक पदार्थों, कीमती धातुओं और मुफ्त उपहारों सहित 427 करोड़ रुपए और तमिलनाडु में इसी श्रेणी में 438 करोड़ रुपए की जब्ती हुई है। आयोग ने बताया कि आचार संहिता को सख्ती से लागू करने के उद्देश्य से त्वरित कार्रवाई और औचक निरीक्षण के लिए दोनों राज्यों में 5,000 से अधिक फ्लाइंग स्क्वाड टीमें और 5,300 से अधिक स्थिर निगरानी टीमें तैनात की गई हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के अंतर्गत 23 अप्रैल को 152 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम उत्तरी बंगाल के मालदा जिले में स्थित इंग्लिश बाजार विधानसभा क्षेत्र के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
मालदा जिले की इंग्लिश बाजार विधानसभा सीट पर मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी की श्री रूपा मित्रा चौधरी विधायक हैं। इस सीट से कुल 12 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनमें 5 निर्दलीय उम्मीदवार भी शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अमलान भादुड़ी को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने आशीष कुंडू को टिकट दिया है। CPIM की ओर से अंबर मित्रा और कांग्रेस की तरफ से आलम मसूद चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 2,49,000 के करीब है। भाजपा युवाओं और महिलाओं को रोजगार और आर्थिक लाभ देने का वादा कर रही है। वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस राज्य सरकार की मौजूदा योजनाओं को जारी रखने पर जोर दे रही है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
ऑस्ट्रिया के चांसलर डॉक्टर क्रिश्चियन स्टॉकर की भारत की पहली यात्रा के दौरान नई दिल्ली में भारत ऑस्ट्रिया व्यापार मंच का आयोजन किया गया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में इस मंच ने दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करने का अवसर दिया। भारत ने आधिकारिक रूप से पुष्टि की है कि उसे ब्रिटेन और फ्रांस के नेतृत्व में होर्मुज जलडमरू मध्य से पारगमन की सुरक्षा के लिए शुरू की गई समुद्री पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी। होर्मुज जलडमरू मध्य वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है और भारत के लिए भी ये व्यापारिक मार्ग बेहद अहम है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान से एक व्यापक शांति समझौते को अंतिम रूप दिए जाने तक ईरानी बंदरगाहों पर अमरीकी नौसेना की नाकाबंदी जारी रहेगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि ये नाकाबंदी तब तक जारी रहेगी जब तक कि ईरान के साथ शत प्रतिशत समझौता नहीं हो जाता। उधर ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमरीका उसके बंदरगाहों को निशाना बनाकर समुद्री नाकाबंदी जारी रखता है तो वह जवाबी कार्रवाई करेगा। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों के आवागमन के लिए शर्तें भी स्पष्ट कर दी हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के पहले के बयान पर स्पष्टीकरण दिया। श्री बकाई ने कहा कि ईरान द्वारा पूर्व निर्धारित मार्ग से होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों को आवागमन की अनुमति दी जाएगी। महिला क्रिकेट में कल रात डर्बन में दक्षिण अफ्रीका ने पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 6 विकेट से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन बनाए। जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने लॉरा वुलवार्ट के 51 रन और एनरी डर्केसन के नाबाद 44 रन की पारी की बदौलत 5 गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया। IPL क्रिकेट में कल रात अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 5 विकेट से हरा दिया। आज बेंगलुरु में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच दोपहर बाद 3:30 बजे से खेला जाएगा। एक अन्य मुकाबले में हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। हमारी श्रृंखला पीपल्स पद्म की कड़ी में आज हम जम्मू कश्मीर के जाने माने लेखक और विद्वान शफी शौक के साथ चर्चा प्रसारित कर रहे हैं। उन्होंने कश्मीरी साहित्य और भाषा के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
مرزا غالب کی بہترین غزلوں کا انگریزی ترجمہ کیا ہے, دی بیسٹ آف مرزا غالب پرشین پوئٹری, تو میری کتاب سے بھی بہت چلی اور بہت پسند کی گئی. اسی طرح میں کبھی اردو کی بیسٹ صوفیانہ پوئٹری کو کشمیری میں ڈالا, اسی طرح ایسے ہی کام کرتا رہا اور اپنی شاعری اور افسانے لکھنے کے ساتھ ساتھ میری 106 کتابیں چھپ چکی.
ये चर्चा आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड से 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित की जाएगी. उत्तराखंड में चार धाम यात्रा के लिए ऑफलाइन पंजीकरण कल से शुरू हो गया. पहले दिन 2713 श्रद्धालुओं ने व्यक्तिगत रूप से पंजीकरण कराए. रविवार से शुरू हो रही इस यात्रा से पहले ही पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है. इस वर्ष की हज यात्रा आज से शुरू हो रही है. जायरीन का पहला जत्था देश भर के विभिन्न स्थानों से सऊदी अरब के लिए रवाना होगा. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने बताया कि 1,75,000 से अधिक जायरीन के भारत से हज यात्रा में शामिल होने की उम्मीद है. और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज.
जागृति, आज महिला आरक्षण गिरने को राजस्थान पत्रिका सहित सभी अखबारों ने सुर्खी बनाया है. पत्र लिखता है, विधेयक गिरा, महिला आरक्षण पर ब्रेक. केंद्रीय मंत्री अमित शाह बोले, विपक्ष ने मौका गवाया, महिलाएं देख रही हैं राह को रोड़ा कौन. नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का बयान, सशक्तिकरण का नहीं चुनावी नक्शा बदलेगा बिल. अमर उजाला ने भाजपा महिला सांसदों के विरोध को सचित्र प्रकाशित किया है, संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में गिरा. दैनिक जागरण ने लिखा है, विपक्ष के अड़ंगे से गिरा महिला आरक्षण संशोधन विधेयक. पंजाब केसरी की खबर है, महिला आरक्षण बिल गिरा, इससे जुड़े 2 बिल सरकार ने वापस लिए, भाजपा करेगी राष्ट्रव्यापी विरोध. नवभारत टाइम्स ने लिखा है, ईरान ने होर्मोज खोला, ट्रंप ने कहा शुक्रिया, लेकिन नाकेबंदी जारी रहेगी. देशबंधु की सुर्खी है, ईरान का लेबनान में सीज फायर के बाद बड़ा फैसला, 49 दिन बाद पूरी तरह खोला होर्मोज स्ट्रेट. जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर सुरक्षा का सवाल शीर्षक से दिल्ली हवाई अड्डे पर गुरुवार को 2 विमान के पंखों के आपस में टकराने की घटना के मद्देनजर सुरक्षा चूक का सवाल उठाया है. पत्र लिखता है, हर हादसे की तरह इस मामले में भी एक वायु यातायात नियंत्रक और 2 पायलट को ड्यूटी से हटा दिया गया, लेकिन सवाल है कि महज इस तरह की कार्यवाही से सुरक्षा चूक का स्थायी हल निकल पाएगा. जाहिर है, जब तक समस्या की जड़ में जाकर उसे खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक व्यवस्था में सुधार नहीं हो पाएगा. दैनिक भास्कर की खास खबर है, न्यूयॉर्क के 13 एली चुनाव नतीजों से शेयरों तक सटीक भविष्यवाणी कर रहे माइक्रोसॉफ्ट हैरान, कंपनियां भी जोड़ने के लिए बेचैन. हिंदुस्तान ने एम्स के अध्ययन को प्रमुखता दी है. खेलने की उम्र में दिल के रोग का खतरा, लड़कियों की तुलना में लड़के अधिक पीड़ित, शारीरिक सक्रियता की कमी और फास्ट फूड के सेवन से बढ़ रही है समस्या. वहीं लोकसत्ता ने चारधाम यात्रा शीर्षक से तीर्थ यात्रियों के लिए सरकार की हेल्थ एडवाइजरी को प्रमुखता दी है. सेहत की कराएं जांच, फिर आए चारधाम.
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर. लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण हेतु संवैधानिक संशोधन विधेयक सदन में पारित नहीं हो सका. एनडीए की महिला सांसदों का विपक्षी दलों के खिलाफ संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन. गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, विपक्ष का यह जश्न दशकों से अपने अधिकारों का इंतजार कर रही महिलाओं का अपमान. विधानसभा चुनावों से पहले तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में निर्वाचन आयोग ने 865 करोड़ रूपये से अधिक की संपत्ति जब्त की. भारत को होर्मुज जलडमरू मध्य से पारगमन की सुरक्षा के लिए ब्रिटेन फ्रांस के नेतृत्व वाली समुद्री पहल में शामिल होने का निमंत्रण. ईरान की चेतावनी, यदि अमरीका नौसैनिक नाकाबंदी जारी रखता है तो वह जवाबी कार्रवाई करेगा. और महिला क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका ने डरबन में पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 6 विकेट से हराया. इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ. नमस्कार.